नमस्कार, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ सोशल वर्कर बैठे हुए हैं, जो कि समाज के विभिन्न क्षेत्र में कल्याण का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या स्पिरिचुअलिज्म और सोशल सर्विस दोनों को मिलाया जा सकता है? दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध है? क्या स्पिरिचुअलिज्म सोशल सर्विस को और बेटर बना सकता है? तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे बीच आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं। दीदी, जैसे मैंने पहले पूछा कि सोशल सर्विस जैसे समाज की सेवा करने वाले लोग और स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकता, ये दोनों को कैसे क्या मिलाने से कुछ फायदा होता है? ये जरूरी है कि जैसे हम सोशल सर्विस का बात करते हैं, समाज की सेवा, तो एक तरह का वो एक भगवान का काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने से क्या ज्यादा और फायदा हो सकता है?
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो सोशल सेवा पर उपस्थित हैं, उन भाइयों को आज यहाँ पर आमंत्रित करके बुलाया गया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, उसके साथ साथ ये सोशल सेवा भी करते हैं। तो आप सभी के मन में, क्योंकि संसार के अंदर बहुत ऐसे सेवाधारी होकर गए हैं जिन्होंने सोशल सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया,
सोशल सर्विस ही ऑलरेडी एक सेवा है।
जी जी।
तो स्पिरिचुअलिज्म भी क्या एक सेवा है?
जी।
किस तरह से ये सेवा का काम करता है?
ये जैसे सोशल वर्कर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ कल्याण का काम करते हैं, जैसे समाज के लिए धरती पर ऐसे बहुत समाज सेवी होकर गए हैं जिन्होंने अपने लाइफ को पूरा सोशल सेवा में समर्पित किया, और सोशल सेवा के हित के आगे उन्होंने ना अपनी व्यक्तिगत सेवा दी की और ना उन्होंने कोई अपने पारिवारिक सेवा दी की। सोशल सेवा को, समाज की सेवा को उन्होंने सबसे ऊपर रखा। उसके लिए कितने भी उनके जीवन के अंदर रूढ़िवादी या स्वतंत्रतावादी या इतने संग्राम आए, तो उनका भी उन्होंने सामना किया, पर वो अपनी बात पर दृढ़ता से अड़े रहे। उन्होंने इस प्रकार इस सेवा को लिया कि कईयों ने अपनी जान तक का कुर्बान कर दिया और ऐसी सोशल सेवा इस देश के अंदर करके दिखाई। ऐसे हमारे बहुत महान पुरुष हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने लोगों के अंदर करुणा और दया की भावना जागृत की। उसके साथ साथ गुरु नानक हुए, उन्होंने लोगों के अंदर एक परमपिता परमात्मा के लिए सबकी भावना बिठाई, सबको अंधकार से निकालकर एकता के सूत्र में बांधा। जैसे हमारे बीच में ईसा मसीह हुए, उन्होंने सबको प्यार का पाठ पढ़ाया कि हम सब एक परमात्मा की संतान है, आपस में भाई भाई है। इसी प्रकार महावीर हुए, उन्होंने लोगों को अंतर्मुखता और नियम और संयम में बांधा। इसके साथ हमारे महात्मा गांधी है, जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए सत्य और अहिंसा का नारा लगाया और नारा लगा करके जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए उन्होंने एक जनहित का संगठन बनाया और जिससे उन्होंने देश को स्वतंत्र किया। स्वतंत्रता संग्रामियों में सबसे श्रेष्ठ महान नाम आज गांधी जी का लिया जाता है। इसी प्रकार बहुत सोशल सेवाधारी इस संसार में महान पुरुष हुए। शिवाजी हैं, आप उनका नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी माता जीजाबाई से बचपन में वीर कथाएं सुन सुन करके, वो जब इस संसार में इस क्षेत्र पर उतरे तो बहुत भयंकर दुनिया का रूप था, लेकिन उन्होंने दुश्मन से लोहा लिया और कभी भी हारे नहीं। उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके, अपने माता की बातों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। इस प्रकार से बहुत ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने सेवा के लिए बहुत कुछ सहन किया।
तो दीदी हम लोग क्वेश्चन अभी लेंगे, जो हमारे गेस्ट आए हैं उनके मन में भी कुछ प्रश्न है।
गुड इवनिंग मैडम, कैन स्पिरिचुअलिज्म एबल टू चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ द जनरल पीपल इन द सोसाइटी?
बिल्कुल,
कैसे?
100% बदल सकता है। अगर सोसाइटी का एक दो मेंबर भी आध्यात्मिकता में आ जाए तो एक दो का प्रभाव चार पर पड़ेगा, चार का आठ पर पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, ईगो होता है, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ जाता है। आप किसी को क्रोध में दो शब्द बोलिए, वो आपको ज्यादा क्रोध में चार बोलेगा, फिर आप आठ बोलेंगे। तो आपके क्रोध का प्रभाव दूसरे पर पड़ गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष भय चिंता ये नफरत, ये चीजों का प्रभाव संसार भर में पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति अगर प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता शक्ति और गुण लेकर कार्य करेगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, ऐसा हमारा अनुभव है। हम अकेले इसमें आई थी, उड़ीसा में आई थी, थोड़ा भय था, कल्चर अलग है, हम उड़ीसा के नहीं है, और भाषा अलग, जाति अलग, हम क्या कर सकेंगे। लेकिन हमारी दीदी जी ने कहा कि तुम सब कुछ कर सकती हो, एक अकेला सूरज सारे विश्व को रोशनी दे सकता है, एक जगा हुआ दीपक 1000 को जगा सकता है, तो तुम क्या नहीं कर सकती हो? क्योंकि तुम्हारे बैकबोन में, फ्रंट में, इधर उधर सब तरफ सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव है। और यही लक्ष्य को लेकर हम यहाँ आ गए, और अभी तक करीब 50,000 भाई बहनों के को अपना संग लगा सके, और कम से कम 1000 टीचर्स, उड़िया टीचर्स तैयार हो गई जो अपनी भाषा में दूसरों को ज्ञान दे सकती है। तो आप भी तो हमारी तरह एक मानव है ना, हम कर सकते तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ आत्मविश्वास रखिए और परमात्म विश्वास रखिए, ये दो विश्वास मनुष्य के बहुत बड़े होते हैं। और परमात्मा को अपना साथी बना लीजिए तो वो हर पल हर सेकंड आपको हेल्प करेगा, सहयोग देगा।
अभी हम दीदी और एक क्वेश्चन पर जाए, पूछने वाली है मीनाती बिंधानी, जो वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी।
आज भी नारी सुरक्षित नहीं है, तो ये समाज क्यों नारी को इतना सफलता लेने के लिए नहीं चाहते है, और नारी को क्यों ये अलग दृष्टिकोण से देखते हैं?
देखिए, ऐसा आप अपने अंदर कमजोरी का संकल्प मत रखिए। अभी नारी का कोई भी कमजोरी का रूप नहीं है। एक समय था जब नारी भोग विलास की सामग्री मानी जाती थी और पैर की जूती मानी जाती थी, उसको घर में रखा जाता था। लेकिन आज नारियां बहुत आगे आ चुकी हैं। परमात्मा ने भी इस विद्यालय के अंदर नारियों को गाइडेंस के रूप में रखा है, और उसने कहा है कि नारी के द्वारा ही मैं स्वर्ग का गेट खुलाता हूं। तो नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है, वो अबला नहीं है, वो सबला है। उसके आत्मविश्वास अपना होना चाहिए, उसको कोई नहीं दिखा सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो जो चाहे सो कर सकता है। मैंने जब इस आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखा तो 1000 लोग हमारे ऑब्जेक्शन पर खड़े हो गए, हम अकेले थे, लेकिन विजय हमने प्राप्त की। वो सब नतमस्तक हो गए कि ये ईश्वरीय कार्य करना चाहती है तो इसको करने दो। लेकिन आपको अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, कोई आपको छू नहीं सकता है, कोई आपको गलत नहीं कर सकता है, और आपकी सुरक्षा अपने हाथ में। परमात्मा को साथी रखिए। हमारे ऐसे अनुभव हैं, एक एक बहन अकेली, आप देखिए जब भोपाल के अंदर गैस निकली थी तो उस गैस से सब प्रभावित हो रहे थे, लेकिन एक आश्रम के अंदर दो बहनें बिल्कुल पड़ोस अड़ोस सब में गैस फैल गई और उनको आवाज आ गई ऊपर से, क्योंकि उनका साथी परमात्मा था, कि तुम पानी अपने पास रख लो और पंखा चला लो और उसके नीचे बैठ जाओ, आपका गैस कुछ नहीं कर सकेगी। हजारों लोग गैस से प्रभावित हुए, उन बहनों का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर कोई चोर भी आपको हाथ लगाने आएगा तो कईयों को ऐसा दिखाई दे गया कि इसमें तो अग्नि निकल रही है, परमात्मा उसका रक्षा करता है, वो अग्नि देखकर भाग जाता है। ये सब अनुभव के विषय।
अपने आपको इसके लिए चेंज करें, किससे प्रस्तुत करें ताकि हमारे ऊपर ये सब जो समाज में हो रहा है वो कैसे प्रभाव ना
पड़े। उनको थोड़ा शक्ति लेनी पड़ेगी ना।
अच्छा,
सबसे ऊंची पावर है आध्यात्मिक पावर, आत्मिक पावर, आत्मा अविनाशी है और परमात्मिक शक्ति। वो शक्ति जहाँ से मिल रही है, जहाँ से उसका प्रभाव है, वहाँ उनको जुड़ना पड़ेगा। उसमें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको समय देना पड़ेगा। हर चीज में बनने के लिए तो समय चाहिए ना, वो समय ला करके आत्मिक और परमात्मिक शक्ति को अपने अंदर भरे तो वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जिस फील्ड पर वो अपनी सेवा कर रहे हैं वो फील्ड में भी जागृति पैदा कर देगी। एक नारी तो क्या क्या कर देती है, कितनी जागृति किस किस देश में ला देती है,
वो तो
आप भी कर सकती, कोई बड़ी बात नहीं है।
अभी तो दुनिया में वो चीज बहुत देखने को मिल भी रही है, हमारा प्रेसिडेंट से लेके लक्ष्मीबाई से लेके बहुत नारी ऐसा है जो अकेले खड़े हुए हैं और दुनिया उनके पीछे जाने के लिए।
अभी देखिए नारियां फौज में भी भर्ती हो जाती है, क्या क्या नहीं करती है। आत्मविश्वास
होना चाहिए। अभी और एक क्वेश्चन हम लेंगे जो प्रतिमा दास पूछने वाले हैं।
नमस्ते दीदी, क्या हम इस कलियुग में आध्यात्मिक होने से हमको परमात्मा का प्राप्त हो सकता है?
हम यही आपको कहना चाहते हैं कि कलयुग का अभी अति का समय चल रहा है और गीता के महावाक्य के अनुसार जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा का अवतरित होता है और अवतरित होकर के वो अपने बच्चों को तीसरा नेत्र देता है। आज भक्तों के पास आपको तीसरा नेत्र नहीं मिलेगा, कोई शास्त्रों में नहीं मिलेगा। आप तो भक्तों को ये कहते रोज सुनते हो कि हे प्रभु मुझे नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। दो नेत्र पर भी तीसरा नेत्र मांगता है। तो कलयुग के अंतिम समय पर परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रही है। अगर उस नेत्र को आप ले लेंगे, तीसरा नेत्र का अर्थ होता है कोई ऐसी आंखियां नहीं खुलेगी लेकिन दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र के संसार चक्र है क्या, मेरा लाइफ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सारी नॉलेज परमपिता परमात्मा अभी कलयुग के अंतिम चरण में दे रही है और अभी टाइम है आप इसको लेकर के खुद जीवन में अनुभव कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो कि अपना अपना जो थ्योरी है, अपना अपना जो विश्वास है वो लोगों को बोल रहे हैं कि इसको फॉलो करो। तो हम साधारण लोग हैं, हम हमारे पास ना इस संस्था के बारे में ज्यादा ज्ञान है, ना उनके बारे में, ना उनके बारे में। तो हम एक साधारण इंसान कैसे बिलीव करे और कहाँ जाए, जबकि हमारे पास पांच रास्ता है, तो हम किस रास्ता को क्यों चुने?
आपको मैंने सवेरे भी बताया था कि उसमें आपको परखने की शक्ति चाहिए। आपको बताया था कि एक सोने की दुकान है जिसमें कोई शो नहीं है, कोई भीड़ नहीं है और बहुत कॉस्टली है, लेकिन 99 सोने की दुकान है बहुत सस्ता है, बहुत भीड़ है और बहुत शो है, लेकिन पार्की कहाँ जाएगा, वो 99 को छोड़ देगा, एक की तरफ चला जाएगा। तो आपको पहचानने के लिए, मनुष्य को सत्य को समझने के लिए और पहचानने के लिए बुद्धि मिली है।
तो पारखी नजर हम कहाँ से लाए? पहले हम तो संसार के जंजाल में पड़े हुए हैं।
पड़े होने पर भी आप वन आवर निकालेंगे और निकाल करके उसको अपने जीवन में, जब सत्य का प्रभाव आपके पास आएगा तो आप अपने आप कहेंगे। जब लोहे के ऊपर अग्नि का प्रभाव जाता है तो अपने आप वो अग्नि रूप बदल देती है ना, लाल हो जाता है। तो सत्य तो परमात्मा है ना, जब उसके संग का प्रभाव आप ये आत्मा पर आ जाएगा तो आप अपने आप समझ लेंगे सत्य क्या है और गलत क्या है। मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे हो सकता है, होगा, पर जब आप भी हमारी तरह उस चीज का अनुभव कर लेंगे तो आप फिर खुद कहेंगे ये सही है, होगा नहीं है। तो अनुभव का विषय तो अनुभव से ही पता पड़ेगा ना।
हम जो भी क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा मन कैसे हम स्थिर रखें, और मैं कभी कभी सोचता हूँ जो काम करता हूँ उसमें मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, या सफलता के शीर्षक में पहुंच पाऊंगा या नहीं, ऐसा हमेशा सोच आता है मन में, तो इसको कैसे दूर कर सकें?
मतलब ये है कि आपको डाउट आ जाता है कि मन कैसे एकाग्र करूं। अब मन को एकाग्र करने के लिए मैं पहले भी भाई को बताया कि मन की नॉलेज चाहिए। मन क्या चीज है? मन क्या है? मन घोड़ा है और बुद्धि उसके ऊपर लगाम है। अगर घोड़ा व्यर्थ चिंतन में जाएगा और नकारात्मक विचार करेगा तो क्या करेगा? जो दौड़ लगाएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव है ही नहीं, तो वो वीक हो जाएगा और हर बात में डाउट करता जाएगा। और ज्यादातर मन हमारा क्या करता है? पर चिंतन करता रहता है, पर दर्शन करता है, नकारात्मक सोचता रहता है, नेगेटिव बातें। तो उसको पहले तो मन को पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा, नकारात्मक खत्म करना पड़ेगा, और उसको ना किसी का परचिंतन करना होगा, स्वचिंतन करना पड़ेगा। स्वचिंतन आत्म उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की सीढ़ी है, ये सच है। तो जब आप स्वचिंतन की विधि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर या इस गॉडली नॉलेज के द्वारा प्राप्त कर लेंगे तो आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और डाउट को भी निकाल देंगे, डाउट खत्म हो जाएंगे। इसके लिए इसके कहा जाता है कि यहां जब आप 7 डेज का क्लास कर लेंगे तो नो डाउट, नो प्रॉब्लम और नो क्वेश्चन। और 7 डेज को आपने 1 महीना स्ट्रांगली डेली क्लास किया तो आप सदा काल के लिए डाउट से, क्वेश्चन से और किसी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे।
पर आजकल ये जो लोग सब होते हैं, इन लोगों में तो इतने सारे भ्रष्टाचार होते हैं और ये लोगों भगवान को भी भूल जाते हैं, ये सब हम कैसे और दूर कर सकेंगे उनके मन से?
मैं ये कह रही हूं कि आप लोगों की चिंता मत करो, आप अपने विषय में सोचिए कि मैं कैसे सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम आनंद का अनुभव करूं। लोग क्या करते हैं उससे मन जाइए, क्योंकि ये तो संसार रंग बिरंगी दुनिया है। इसमें कोई कहता होगा दुनिया के अंदर रावण का पार्ट भी बचता है, सीता का भी बचता है और लक्ष्मण का भी बचता है, सब बचते हैं, सब अनेक प्रकार के पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है? माई पार्ट, मुझे डू और डाई, मुझे क्या करना है और कैसे मरना है, कैसे जीना है, ये बात आप सीख जाइए। चाहे कितने भी संसार में महापुरुष हुए पर जिसने शरीर धारण किया वो भगवान तो नहीं हो सकता है। भगवान जो होगा वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा। सर्वधर्म पिता, सारे संसार के गुरु गुसाई भी उसको मानेंगे, वही परमात्मिक शक्ति है, वो एक लाइट है, वो एक ज्योति है, वो कोई देहधारी नहीं है। जब लाइट ज्योति परमात्मा से आपका कनेक्शन हो जाए, आप भी एक लाइट है, आत्मा यहाँ रहती है, शरीर रहता है, लाइट निकल गई, आंख से निकला, कान से निकला, कुछ पता नहीं है। कहते हैं साइंटिस्ट लोगों ने कांच के अंदर मरने वाले को बंद कर दिया, कांच फट गया, आत्मा निकल गई, दिखाई दी नहीं। तो वो भी एक लाइट है। जब अपने असली स्वरूप में आप स्थित होकर और असली परमात्मा को याद करेंगे तो आप सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, सत्य को अनुभव कर सकेंगे। अभी हम क्या है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मैं फलाना हूं, सोशल वर्कर हूं, और परमात्मा भी कोई राधा है, कोई कृष्ण है, कोई रामदेव है, कोई देह को ही देखते हैं और देह को ही सोचते हैं। और देखो देखेंगे तो देहधारी दिखाई देगा आपको, लेकिन जो सुप्रीम पावर है उसकी पावर का कनेक्शन नहीं मालूम पड़ेगा। आज जो मेन पावर हाउस है उस वहां तो कोई जाति ज्योति मनुष्य नहीं है, एक लाइट है, लाइट से कनेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिक रोशनी आती है। तो परमात्मा भी लाइट है, आप भी लाइट है,
लेकिन परमात्मा भी तो देह लेके आते हैं ना, जैसे कृष्ण है राम,
वो देह लेके नहीं आते।
फिर
वो कभी भी गर्भ से जन्म नहीं होता है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं जब संसार में आता हूँ दैवी संस्कृति की स्थापना करने के लिए, तो मैं परकाया में प्रवेश करता हूँ, प्रकृति को वश करके प्रकृति का आधार लेके उसके तन में आकर बोलता हूँ, बैठता हूँ। तो आप ये विश्वास करें कि 75 वर्षों से परमात्मा जो सुप्रीम सोल है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में या भ्रकुटी के बगल में बैठकर बोलता था, वर्षन उच्चारण करता था कि मैं इन आंखों से तुम बच्चों को देख रहा हूँ और तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। मेरा अपना शरीर नहीं है, इसलिए मैंने इसका शरीर लोन पर लिया है। वो कार्य तो उसका गुप्त वेश में चल रहा है, इसलिए कहते हैं गुप्त वेश में सत्युग रचने आया थे भगवान, अब तू जाग जाग रे इंसान, जाग जाग रे इंसान। परंतु वो नहीं जागता, उसके लिए क्या कहते हैं, कितना भी आवाज होता रहे वो कुंभकर्ण की नींद में सोता ही रहेगा। और भी क्या कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सुखोबत है, जो जागत है सुपावत है। तो जाग रहे हैं लोग, जागने वाले, अभी भी परमात्मा पढ़ा रहा है। आप आइए और पढ़िए, तब आपको अनुभव होगा कि कैसे परमात्मा पढ़ा रहा है, मैं सुख शांति आनंद प्रेम को प्राप्त कर रहा हूँ।
बहन जी, मैं जानना चाहती हूँ, टीवी खोलने से सुबह शाम प्रवचन सुनते हैं, सब जगह में प्रवचन चलता है, सीजन आ जाता है, सब सुनते हैं, मगर कुछ प्रभाव नहीं होता है आदमी का। जो आदमी लोग कितना बोलते हैं जो कलयुग आ गया इसलिए आदमी का परिवर्तन हो गया, तो आप क्या बोलते हैं?
क्या आप आदमी लोग या दूसरे लोग क्या करते हैं इन बातों में मत जाइए। आप वो लोग टीवी देखते हैं, भाषण सुनते हैं, सब करते हैं, फिर भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बच्चे को आपने कॉलेज में भर्ती किया और भर्ती के करने के बाद वो अगर पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर बन सकता है, वकील बैरिस्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है? उसको कॉलेज में जाना पड़ेगा ना। तो कितना भी आप उसके लिए ट्यूशन लगा दिए, कितना भी आप उसको टीवी दिखाइए, कुछ भी करिए, वो नहीं बदलेगा। यहाँ तक कि आप भी नहीं बदलेंगे। आपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का थोड़ा बहुत शिक्षा ली है, आप सहयोग में हैं, संपर्क में हैं, पर आपने कभी इसको डेली अध्ययन करने की कोशिश नहीं की। तो जब तक हम डेली अध्ययन करके जो चीज गॉड के पास है वो हम प्राप्त नहीं करेंगे तो दूसरे लोग की गारंटी क्या कर सकते हैं? आप खुद विचार करिए। आज तो कलयुग है, ये तो सच है, कलयुग के बच्चे आपकी बात कैसे मानेंगे? वो कहेंगे माँ आप जहाँ जाते हो रोज जाते हो और आपको उस कॉलेज में सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद की प्राप्ति होती है, आपका टेंशन खत्म हो गया है, आपकी आत्मा के अंदर एकदम पीस ऑफ माइंड आ गया है, वो ये क्वेश्चन करेंगे। आप कहेंगे मेरे पास तो है ही नहीं है सब, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? आज मैं आपको कह सकती हूँ जोर से, क्योंकि मैं इस सब चीजों को पा रही हूँ, मैं डेली डेली 50 वर्षों से पढ़ रही हूँ और मैं डेली डेली अमृत वेले मॉर्निंग 3:45 से 4:45 तक गॉड से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, अनुभव से झोली भरती हूँ, सुख शांति आनंद प्रेम पाती हूँ, तो मैं ये बात कह सकती हूँ। लेकिन जो खुद नहीं करेगा वो दूसरों को कहेगा, वो यही कहेगा कलयुग कलयुग में तो ऐसे ही चलेगा। मैं भी कहूंगी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि वो लोग नजदीक ही नहीं आ रहे हैं ना, कि जहां से कलयुग की बातों को छोड़कर सत्युग की बात लें और परमात्मा के विषय में नॉलेज पढ़े वो इसके नजदीक ही नहीं पहुंच रहे हैं, तो प्राप्ति क्या होगी उनको।
तो फिर दीदी इसका सारा सम अगर ये निकाले कि ये दुनिया में अगर हम अपने आप को पहचानने का कोशिश करें, आध्यात्मिक रास्ता में जाए, उसमें थोड़ा सा हमको खुद के बारे में स्वार्थी होना पड़ेगा कि मैं मेरे बारे में ही सोचूंगी, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो ऊपर वाले के हाथ
में। नहीं, पहले ये सोचना होगा, उसके बाद आप दूसरों के ऊपर मेहनत करें। आत्मा के हिसाब से, परमात्मा के नाते से हम सब भाई भाई हैं। कोई आत्मा का तो लेडीज जेंट्स का रूप नहीं है, तो आत्मा के नाते से सब भाई भाई है।
तो पहले अपना करके फिर बाकी भाई बहनों के
भाई भाई की दृष्टि रख के फिर आप सबको बताइए।
ठीक है,
फिर वो लेते हैं ना लेते हैं उनका भाग, उनकी तकदीर और गॉड जाने।
ठीक है,
आज हम कितनों को बताते हैं, आज हमारा पांचवा ग्रुप बैठा है, हम सबको बताया, सबको रिक्वेस्ट,
कोई लिया कोई नहीं लिया,
कोई आएंगे डेली कोई नहीं आएंगे, उनकी मर्जी, उनके पीछे हमारा इतना अटैच नहीं है। जो वो नहीं आएंगे तो हम रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं।
ठीक है दीदी, ये कोशिश हम लोग जारी रखेंगे खुद को सुधारने का, उसके साथ साथ हमारे जो आत्मा से जुड़े हुए भाई बहन है उनको सुधारने के लिए कोशिश करते रहेंगे, ये काम हमारा जारी रहेगा। तो आज का कार्यक्रम को हमको यहीं रोकना होगा क्योंकि समय उधर से निर्देश दे रहा है कि अब खत्म करो। तो दीदी आज यहीं पर रुकते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकालते हैं, इतने लोगों के मन से जितना क्वेश्चन है उसका आंसर देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भी यहाँ पर आए, अपना वक्त निकालते हैं, यहाँ पर आते हैं, अच्छा बात सुनते हैं, तो आपके जीवन में जरूर इसी चीज को लेके जरूर सुधार होगा आगे, यही आशा हम रखते हैं। तो दर्शक बंधु, आशा करते हैं कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आज जो जो बातें हमने यहाँ पर की है तो इसमें से आप जरूर कुछ सीख भी लिए होंगे और अपने जिंदगी में जरूर इस्तेमाल भी करेंगे। फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।